ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में कल शाम 7 बजे तक लगभग 66.58% मतदान हुआ। उधमपुर जिले में सबसे अधिक 72.91% वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। आयोग ने कहा कि कहीं भी पुनर्मतदान की स्थिति नहीं आई। इस बार के मतदान ने 2024 के लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आयोग के अनुसार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया और चुनाव के बहिष्कार और हिंसा को पूरी तरह से नकार दिया। 3 चरणों के मतदान के दौरान कानून व्यवस्था में व्यवधान की कोई घटना सामने नहीं आई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव आने वाले वर्षों में देश में लोकतांत्रिक भावना को प्रेरित करता रहेगा। इधर हरियाणा विधानसभा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल पलवल जिले में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस न काम करो न ही करने दो की नीति पर चलती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों तक देश पर राज किया, लेकिन लोगों को सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, पक्के घर सहित मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। उधर सोनीपत के गुहाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। श्री गांधी ने कहा कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है और ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान आज महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर संपन्न होगा। इस अभियान में देश भर की राज्य सरकारों, स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक समूहों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितम्बर से शुरू किया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लोगों से आज सुबह 9 बजे से स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हजारीबाग में 79,156 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया जाएगा। बाद में श्री मोदी 20 सितम्बर को शुरू हुए परिवर्तन समारोह के समापन पर हजारीबाग के गांधी मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने इसराइल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां रह रहे भारतीयों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। दूतावास ने उनसे सावधानी बरतने, देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसराइल के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोग दूतावास की 2400 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन +972 5475 20711, +972 5432 78392 और ईमेल conus1telaviv@meagov.in पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने उन भारतीयों के लिए भी लिंक साझा किया है जिन्होंने अभी तक इसके साथ पंजीकरण नहीं कराया है। गृह मंत्रालय ने बाढ़ प्रभावित 14 राज्यों को 5,850 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। महाराष्ट्र को 1,492 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश को 1,000 करोड़ से अधिक, गुजरात को 600 करोड़ और तेलंगाना को लगभग 417 करोड़ रुपए मिले हैं। ये राज्य इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल भेजे थे। बिहार और पश्चिम बंगाल में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए शीघ्र ही टीमें भेजी जाएंगी। ये दोनों राज्य हाल ही में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। टीमों के मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद आपदा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।